एहसान चुकाई किस तरह, एहसान चुकाई किस तरह,
तूने प्यार से जो पाया, तेरी पालना का बाबा, तेरी पालना का
शांति। तेरी पालना का बाबा, एहसान चुकाएं इस तरह। तो कैसे चुकाएं? सेवा करके। और क्योंकि भगवान की छत्रछाया में पल रहे हैं, भगवान हमें पाल रहा है। स्थूल पालना से भी बड़ी सूक्ष्म पालना होती है। संसार में जितना मर्जी किसी की अगर स्थूल पालना की जाए, अगर मन उसका शांत नहीं है तो उस स्थूल पालना का भी कोई महत्व नहीं है। तो वह बाबा हमारी विशेषकर इस अव्यक्त मास में अव्यक्त रूप से बहुत शक्तिशाली पालना करते हैं। वैसे तो बाबा हमेशा करते हैं, लेकिन इस महीने सभी विशेष रूप से महसूस करते हैं कि एक्स्ट्रा एनर्जी, एक्स्ट्रा शक्ति, एक्स्ट्रा बल हम सब आत्माओं में भर रहा है। और वो भी तब महसूस होता है जब थोड़ा अटेंशन रखते हैं, नहीं तो फिर सामान्य दिनचर्या के अनुसार ही चलता रहता है। तो भगवान की पालना, भगवान का प्यार, उसकी अनुकंपा, उसका आशीर्वाद, उसकी कृपा हमारे पर निरंतर बरसती रहती है। लेकिन उसकी महसूसता कब होती है? जब हम उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, उसके जो फरमान हैं, उसकी जो आज्ञाएं हैं, हमारे प्रति अनमोल शिक्षाएं हैं, उनके साथ हमारा तालमेल अगर बना रहता है, उनसे हमारा प्यार हो जाता है। बाबा ने कहा, अगर ज्ञान से प्यार नहीं है तो भगवान से भी प्यार नहीं है। कल के मुरली में आएगा, पहले बहुत सारी मुरलियों में सुना है, अगर हमारा ज्ञान से प्यार नहीं है तो माना भगवान से हमारा प्यार नहीं है। तो हमको ज्ञान से, ज्ञान के नज़दीक जाना है, ज्ञान से दूरी नहीं बनानी है। और ये अधिकतर होता है ऐसे ही है। योग के लिए तो हम अपना रुचि पैदा करते रहते हैं, लेकिन बिना ज्ञान के योग लगना सहज नहीं होता है। सहज नहीं होता बल्कि लगता भी नहीं है, क्योंकि जिसके साथ हमारा कनेक्शन जुटने वाला है, जिसको हम याद करते हैं, उसके बारे में अगर हमको जानकारी नहीं है, उससे हमारा प्यार ही नहीं है, उसकी बातों का हम पालन नहीं करते हैं, उसके भेजी के पत्र को हम पढ़ते नहीं हैं, किनारे रख देते हैं, तो उससे प्यार होगा कैसे? जितना जिससे प्यार होता है उतना उसकी चीज़ें हमारी अपनी होने लगती हैं, उनका, उन पर पूरा हमारा अधिकार पैदा होने लगता है। तो बाबा ने हमको अथाक जानने दिए हैं, तो बाबा से प्यार तभी होगा जब हमारा उन खजानों से प्यार है, पढ़ाई से प्यार है, वर्षे से प्यार है, पालना से प्यार है, उसके परिवार से प्यार है, उसकी सेवा से प्यार है। इतना ऊंच ब्राह्मण जीवन है, इसकी जो दिनचर्या है उस दिनचर्या से प्यार है, तभी तो उसके नज़दीक जाएंगे। और जब हम ऐसी स्थिति पर जाते हैं तो फिर योग लगाने की मेहनत नहीं करनी पड़ती है, फिर स्वतः सहज याद आती है। जिससे प्यार होता है उसको याद करने के लिए टाइम भी नहीं देना पड़ता है। जितना हमारी उससे नज़दीकियाँ बढ़ती जाती हैं, वो स्वतः नेचुरल ऑटोमेटिकली याद आता है। तो नज़दीकियाँ बढ़ने के लिए बाबा अनेकों युक्तियाँ हमें बताते रहते हैं, दिन प्रतिदिन असंख्य ऐसी युक्तियाँ बताते हैं जिससे हमारा बुद्धि योग बाबा से जुटा रहे, इस संसार से हम डिटैच होते रहें, पुरानी दुनिया भूलते जाएं, पुरानी दुनिया से वैराग्य पैदा होता रहे, नई दुनिया से हमारा बुद्धि योग जुटा रहे या घर जाने की स्मृति रहे। ऐसे असंख्य युक्तियाँ बाबा हमें बताते रहते हैं, लेकिन वो तभी हमारी स्मृति में रहती हैं जब हम उनको बार 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 दोहराते रहते हैं। अगर हम उसको दोहराते नहीं हैं, एक बार ही सुना तो एक बार सुनने से, पढ़ने से, सोचने से, समझने से बुद्धि में बैठता नहीं इतनी जल्दी। हाँ, कुछ समय के बाद बैठना शुरू हो जाता है, एक ही नज़र दौड़ाएंगे तो सारा वो समाता जाएगा, लेकिन पहले मेहनत तो ज़रूरी है, बिना मेहनत के फल नहीं है। आज भी बाबा ने बोला ना मुरली में, मेहनत के बारे में तीन बातें बताई, कौन कौन सी? मुरली तो पढ़ी सुनी होंगी ना सबने, सुनी पढ़ी कुछ तो किया होगा ना। हाँ, एक तो बाप को बच्चों की मेहनत अच्छी नहीं लगी, दूसरा मेहनत के दो कारण, तीसरा अगर एक मेहनत करनी है तो मेहनत करनी है तो जरूर करो, लेकिन उस मेहनत में मोहब्बत हो, प्यार हो। कल का स्लोगन था ना क्या, मोहब्बत की बजाय मेहनत करो तो झूले पे झूलते रहेंगे। उल्टा बोला हमने, हाँ, मेहनत की बजाय मोहब्बत, मोहब्बत में रहो तो तिंद्रे सुख के झूले में झूलते रहेंगे। लेकिन इस मेहनत में सुख है बहुत, इसमें दुख नहीं है, और इस मेहनत में परमात्म प्यार की अनुभूति होती है, उसकी शक्ति मिलती है, उसके प्यार का एहसास होता है। तो आज की मुरली में बहुत सारी बातें हैं, हर एक मुरली में हमारे जीवन को, हमारे जीवन चरित्र को ऊंच बनाने के लिए बहुत सारे ऐसे ज्ञान बिंदु होते हैं जो हमारे ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार करते रहते हैं, हमारे जो स्मृतियाँ हैं उनको तरोताज़ा रखते हैं, ऊर्जावान बनाते हैं हमारे मन को, उमंग उत्साह का संचार होता है। तो ऐसे मुरली के अनेकों फायदे हैं। मुरली तो जैसे हमारे ब्राह्मण जीवन का श्वास है, अगर श्वास नहीं है तो जीवन नहीं है, उसी तरह अगर मुरली हमारे जीवन में नहीं समा रही है तो जैसे हम मृत्यु की तरफ जा रहे हैं, अर्थात भगवान से दूर जाते जा रहे हैं। आज भी मुरली बाबा ने मरे तो हुए हो तुम, बोलो कौन किसके लिए बोला? हाँ, पंजाब के लिए क्या बोला? निर्भय हो, निर्भय हो, बहादुर हो, निर्भय हो। तो आज की मुरली पर हम चर्चा करेंगे। तो आज कौन किसको देख रहा था? त्रिदेव रचयिता, त्रिदेव रचयिता दो प्रकार के बच्चों को देख रहे थे, एक है शाकाहारी, दूसरे अच्छा शाकाहारी, ठीक है, एक है शाकाहारी और दूसरे आकारी। तो शाकाहारी तो सामने होंगे और आकारी कहाँ, किसको आकारी रूप में देखा? परम सूक्ष्म बतन वालों को, जो यहाँ पहुंचे नहीं है और घरों में है उनको बाबा आकारी रूप में देख रहे हैं। तो दो प्रकार के बच्चों को देखा, साकारी और आकारी, दोनों से क्या है? प्यार है। कितना? अति प्यार है। क्यों प्यार है? क्योंकि उसके बच्चे हैं, रचना है। तो त्रिदेव रचयिता अपने रचता को देख रहे हैं, साकारी और आकारी रचना को देख रहे हैं। तो दोनों से बहुत प्यार है, और प्यार के प्यार होने से दोनों एक दूसरे से क्या कहते हैं, कैसे रिस्पांस दे रहे हैं, बच्चे बाप को क्या कहते हैं और बाप बच्चों को क्या कहते हैं। बा 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 बा, नहीं ये नहीं बोला। बच्चे बाप को क्या कहते हैं, बा रचता बा, और बाप बच्चों को क्या कहते हैं, बा रचना। कैसी रचना है, श्रेष्ठ रचना है। बच्चे बाप को बा रचता क्यों कह रहे हैं, क्योंकि बाबा से तीन प्राप्तियां हुई। कौन कौन सी, बाप के रूप में सर्व खजाने से संपन्न बना दिया, ज्ञान के खजाने से संपन्न बना दिया, और शिक्षक के रूप में भाग्य विधाता शिक्षक ने भाग्यवान बना दिया, और सतगुरु के रूप में झोली वरदानों से भर दी, है ना। तो सारे दिन में अपनी झोली में कितने वरदान भरे, क्योंकि अगर मुरली को हम पकड़े तो बहुत सारा काम उसके ऊपर हो सकता है, लेकिन हाथ से निकल ही जाता है। जब स्मृति में आता है तो टाइम ही पूरा हो जाता है, दिन ही पूरा चला जाता है। तो मुरली में कितने सारे वरदान होंगे जो निकालने पड़ेंगे, है ना। तो वो हमको एक नई आदत क्रिएट करनी पड़ेगी, मुरली को नए तरीके से पढ़ना। वरदानों की लिस्ट जैसे बाबा ने कहा ना, अभी जो लास्ट 31 दिसंबर को मुरली चली थी, सोमानों की माला अगर क्या होगा उस गले में पड़ी होगी तो वो क्या होगा, उसका मजा बहुत आएगा, याद में बहुत मजा आएगा। तो हमको वरदानों की माला तैयार करनी पड़ेगी उसमें से, क्योंकि सतगुरु ने वरदान दिए। तो स्मृति में लाना है कि हमको जीवन में कौन कौन से वरदान मिले हैं, जिन वरदानों से हमारा जीवन निर्विघ्न बनता जा रहा है, जिन वरदानों से हमारे जीवन में खुशी का संचार हुआ है, हम दुख की दुनिया से निकल गए, दुख की स्मृतियों की जैसे मौत हो गई, वो बहुत दूर चली गई, वो जैसे अगर आती भी हैं तो थोड़े टाइम के लिए आती हैं फिर चली जाती हैं, क्योंकि हमारी आदत लंबे समय से अभी उन पुरानी स्मृतियों से ओझल होती जा रही है, नई स्मृतियों की हमारी आदत बनती जा रही है। तो नई स्मृतियों की आदत बनने से पुरानी स्मृतियाँ जो वो स्वतः नष्ट हो जाती हैं, है ना। शस्त्र को दुश्मन को मारने के लिए शस्त्र की जरूरत पड़ती है ना, तो हमारे अपने ही ऐसे व्यर्थ की स्मृतियाँ हैं, व्यर्थ के संकल्प हैं, व्यर्थ के विचार हैं, वही हमारे दुश्मन हैं। दुश्मन हमारा कोई दूसरा नहीं है, हमारे अपने ही संस्कार जो हमने अनेक जन्मों के विकर्म किए हैं, विकल्प हैं, कईयों के साथ हिसाब किताब हैं, वही हमने उनको पकड़ के रखा हुआ है। बाबा कहते हैं छोड़े तो छूटे, तो वो छूटेंगे कब, जब बाबा के ज्ञान को पकड़ेंगे तो वो अपने आप छूट जाएंगे। इसलिए बुराइयों को छोड़ने की जरूरत नहीं है, वो स्वतः छूटती है, लेकिन पहले ये सोचते हैं हम कि मेरा क्रोध छूटेगा कैसे, उसका हम प्लानिंग बनाते हैं। ये प्लानिंग ही गलत है, क्रोध छोड़ने की जरूरत नहीं है, क्रोध तो स्वतः छूट जाएगा अगर हम नई आदत का निर्माण करेंगे तो। क्रोध आता क्यों है, क्योंकि वो आत्मा कमजोर है, अंदर से सहन शक्ति नहीं है। अब सहन शक्ति को भरने के लिए ज्ञान को अंदर में अप्लाई करो, योग के छोटे छोटे हम प्रयोग करें, ज्ञान खजाने को बुद्धि में भरते रहें, तो आत्मा की जो कमजोरी है वो समाप्त होती जाएगी, वो शक्तिशाली ताकतवर बनती जाएगी। तो कमजोरी वाली बातें आएंगी भी तो सेकंड में नष्ट हो जाएंगी। इसलिए बाबा ने कहा अभी ये झटपट का सौदा है, अभी अभी का सौदा है, संगम युग अर्थात वरदानी समय है, प्राप्तियों का समय है ये, तो ये अभी अभी किया और अभी भी प्रत्यक्ष फल। तो आज त्रिदेव रचयिता बाप ने साकारी और आकारी रचनाओं को देखा, और बाबा और बच्चों की आपस में क्या हुई, रूरूहान हुई। बच्चे कहते हैं बा रचता बा, और बाबा कहते हैं बा मेरी श्रेष्ठ रचना बा। तो कितना सुंदर है कि भगवान हमारे से मुलाकात करके हमको हमारी महिमा कर रहे हैं, हमारी विशेषताओं को देखकर हमें प्रोत्साहन कर रहे हैं कि तुम इस संसार की सब श्रेष्ठ रचना हो, बा रचना बा। कितनी बड़ी बात है, भगवान से मुलाकात, सारे कल्प में केवल भगवान से हम बच्चे मुलाकात कर पाते हैं, भगत नहीं, मुरली में था ना, हम बच्चे केवल। तो इस स्मृति मेरे तो कितना नशा रहेगा, है ना। फिर बाबा ने बाप के रूप में सर्व के जानों से संपन्न बनाया। तुम सोचें, चिंतन करें, कौन कौन से इसके जाने बाबा ने हमको दिए हैं, कितने के बड़े खजाने दिए हैं, अमूल्य खजाने हैं, अथाह खजाने हैं, अविनाशी खजाने हैं ये, जिन खजानों से आत्मा को जैसे पंख लग गए, खुशी मिल गई है, है ना। जैसे कोई किसी को वरदान अपना लॉटरी हाथ में लग जाए तो कितनी खुशी होती है। तो हमें कौन सी लॉटरी हाथ में लगी है, भगवान ही लॉटरी हमारे हाथ में लग गया। वो कहते ना भगवान तुम्हारी मुट्ठी में है, अब जो करना करा लो उससे, तो उसकी हमारी नज़दीकियाँ बढ़ती जाएंगी दिन प्रतिदिन। तो बाबा से अनेक प्रकार के खजाने मिले, क्यों? क्योंकि हमारा उससे प्यार है, इसलिए उसने हमको दिए। दूसरों को क्यों नहीं दिए? क्योंकि दूसरों से उसका प्यार नहीं है। क्योंकि संसार को नई दिशा दिखाने के लिए, रोशनी देने के लिए, आत्माओं को पावन बनाने के लिए, बाबा का परिचय देने के लिए, बाबा की आज्ञाओं पर चलने के लिए, बाबा को पता हम बच्चे मानेंगे, दूसरे नहीं मानेगा कोई भी, क्योंकि हम भगवान के सपूत बच्चे हैं, आज्ञाकारी बच्चे हैं। तो बाबा ने ऐसे अनेक खजाने दिए और शिक्षक बनकर हमको इतनी ऊंची शिक्षा दे रहे हैं। भाग्य विधाता दात शिक्षक बनकर हमको हमारे भाग्य को बना रहे हैं। जैसे टीचर स्कूल में पढ़ाता तो किस लिए पढ़ते हैं बच्चे? अच्छी सर्विस के लिए, उनका भाग्य ऊंच बने। टीचर कितनी मेहनत करता है, तो यहाँ तो स्वयं टीचर भगवान टीचर बनकर आया हुआ है और हमको पढ़ा रहा है रोज, मीठे बच्चे कह के। बाबा कभी थकते नहीं मीठे बच्चे। और हमारी किसी से दोस्ती हो जाए, अगर किस कुछ समय तक हम तो अच्छी उससे उसकी हमारी और आपस में दोस्ती है, बोल चाल अच्छा है, मीठा मीठा बोल रहे हैं, और एक दिन अगर बोल दिया थोड़ा सा खराब, तो बाबा तो फिर भी नहीं बोलते हैं, उनको पता है। और हमको पता है हम कितने कड़वे हैं, अभी तक भी बोला ना फ्लू की बीमारी, मुंह कड़वा हो जाता है, लेकिन बाबा फिर भी मीठे बच्चे कह के हमको पढ़ाते जा रहे। तो कितना बड़ा हमारा नसीब है, कितना बड़ा भाग्य है, कितनी बड़ी तकदीर है ना। गीत आने वाले कल की तुम तस्वीर हो, नाज करे कि दुनिया तुम दुनिया की तकदीर हो, तो कितनी बड़ी बात है ना। और गुरु के रूप में वरदानों से हमारी झोली भरती, तो महसूस करना है ये बुद्धि रूपी झोली जैसे भगवान के ज्ञान रत्नों से, उसके वरदानों से, उसके प्यार से भरती जा रही है। मुरली को पूरा योग में कन्वर्ट कर देना। जब भी हम मुरली सुनते हैं तो केवल सुनने तक सीमित नहीं रखना, केवल याद रखने तक सीमित नहीं रखना, उसको विजुलाइजेशन करना, तो धीरे धीरे वो मुरली हमारी कमेंट्री के रूप में बनती रहेगी और दिन में स्मृति आती रहेगी, तो वो योग का प्रयोग हम सहज रूप से कर सकेंगे। और जब भी हम योग में बैठते हैं, जैसे मन बुद्धि भागने की कोशिश करेंगे तो तुरंत तो पॉइंट याद आने लगेगा, मन बुद्धि को उसमें रस बैठने लगेगा, और जब एक बार रस बैठ गया तो फिर मन बुद्धि इधर उधर भागेगा ही नहीं। तो फिर बाबा को एक शुभ संकल्प आया, कौन सा शुभ संकल्प था बच्चों के प्रति? हाँ, बाबा को कमी बच्चों की नहीं देखी जाती, अगर कमी है तो बाबा चाहते हैं इनकी कमी कमाल के रूप में परिवर्तन हो जाए, है ना। तो कितना शुभ भावना, शुभ कामनाएं हैं ये, कितनी बड़ी दुआएं हैं। पिछले संडे की मुरली में था ना जादू मंत्र, कौन सा जादू मंत्र दिया था? शुभ भावनाएं, शुभ कामनाएं और शुभ दुआओं का जादू मंत्र। उससे 10 बातें बताई थी, कौन कौन सी, क्योंकि हम पीछे वाला भूल जाते हैं और आगे वाला पकड़ते हैं, लेकिन हर मुरली को बार बार उसको दोहराते रहना बीच बीच में, जितना याद रहे मैक्सिमम, तो दोहराते रहेंगे ना तो मन बुद्धि को वो आदत पड़ जाएगी और उसमें रस बैठेगा, है ना। और एक आत्मविश्वास भी बढ़ता है, और दूसरा महसूस होता है कि बाबा का प्यार हमारे पर बरस रहा है, क्योंकि इस ज्ञान को याद रखना को सहज काम थोड़ा नहीं, भगवान की मदद के बिना इस ज्ञान को याद रखना नहीं होगा, उसकी कृपा के अनुसार ही हो सकता है, लेकिन उसकी कृपा अर्थात उसकी पढ़ाई ही कृपा है। तो कौन कौन सी बातें बताई थी जादू मंत्र से? पिछले संडे के मुरली में था ना जादू मंत्र, शुभ भावनाएं, शुभ कामनाएं और शुभ दुआओं का जादू मंत्र। हाँ, मेहनत से बच जाएंगे, एनर्जी बचेगी, सफलता मिलती रहेगी, एक स्थिति हो जाएगी और संस्कार, बड़े संगठन में चलना सहज हो जाएगा, विहंग मार्ग की सेवा होगी। और क्या बताया था? देखो 5-6 याद आए, बाकी भूल गए, तो फिर से पढ़ना पड़ेगा ऐसे। तो ऐसा नहीं कि याद रहता, उसको बार बार करना पड़ेगा तो याद रहता है। तो ये तीसरी बात, तो बाबा को शुभ संकल्प है कि बच्चों में जो भी कमी कमजोरी है वो कमी कमजोरी से मुक्त हो जाए। तो ऐसा तो बाप ही सोच सकता ना, और वही भगवान हमारे प्रति सोच रहा है ना। संसार में तो घर में अभी कलयुग में तो ऐसा है, बाप और बच्चों की भी आपस में खूब लड़ाई हो जाती है, मार भी देते हैं, एक दो की हत्या भी कर देते हैं, लेकिन बाबा प्यार का सागर है, इतना हम सब बच्चों को प्यार से पालना करते हैं, हमें शक्ति देते हैं, शक्तियों का घी पिलाते हैं जैसे, तो हमें ताकतवर बनाते हैं कि कमी कमजोरियाँ इनकी कमाल के रूप में परिवर्तन हो जाएं, है ना। क्योंकि फिर बाबा ने बाप टीचर सतगुरु को याद किया, तो नशा रहना चाहिए, अगर बाप दाता की स्मृति है तो कौन से अधिकार का नशा रहेगा? रूहानी अधिकारपन का नशा रहेगा। और भगवान हमारा टीचर है तो कौन सा नशा रहेगा? कि हम उसके स्टूडेंट हैं, गोल्डी स्टूडेंट है, उसका नशा रहेगा। और वो सतगुरु है तो सतगुरु के रूप में कौन सा, कि वरदानों से हमारी पालना कर रहे हैं, तो कितनी बड़ी प्राप्ति है ये। तो नजदीकियां, हमारा संबंध संपर्क भगवान से घनिष्ठता दिन प्रतिदिन बढ़ती जानी चाहिए, है ना। नौदा भक्ति बताया ना बाबा ने, नौदा भक्ति नौदा ज्ञान। नौदा भक्ति क्या होती है, उसमें नौ प्रकार की बातें होती हैं, सभी तो हमको भी नहीं आती है, भूल भाल गया हुआ है। श्रवण, कीर्तन, पूजन, पूजन बंदन, फिर लास्ट वाला आत्मनिवेदन है। एक है साख्य, साख्य अर्थात मित्रता, भगवान से हमारी मित्रता बढ़ती जाएगी। तो यहाँ भी ज्ञान में नौदा ज्ञान बाबा ने बताया, तो नौदा ज्ञान के भी हमको कुछ नौ सूत्र ऐसे खुद निकाल देने हैं कि जिससे हमारी भगवान से मित्रता बढ़ती जाए, है ना। भक्ति में तो कहा है केवल तुम ही हो माता पिता बंधु सका, लेकिन वो प्रैक्टिकल में अनुभव करने के लिए तो अभी का समय मिला हमको, और अभी अनुभव करेंगे ना तो फिर उसका गायन लास्ट में वहां से द्वापर युग से स्टार्ट होगा। अगर अभी नहीं अनुभव करेंगे तो कब करेंगे। तो भगवान हमारा माता भी है, पिता भी है, बंधु भी है, सखा भी है, वो और क्या है, अष्ट संबंध कौन से है, भाई भी है, साजन भी है, डॉक्टर भी है, धर्मराज भी है, फिर उसको भी याद रखने का तो धर्मराज भी है बाबा। तो बाबा से नजदीकियां बढ़ानी है और इस योग को रमणीकता में परिवर्तन करना है, रोचक बनाना है, एक ही धर्रे पर नहीं चलते रहना है, नया रास्ता निर्माण करना है। कुछ जो बाबा ने बताया वो तो सब ठीक है, लेकिन उस केवल उसी मार्ग पर नहीं चलना है, हमको अपना भी तो कुछ करना ना। बाबा कहते हैं अपनी गोड़ तो नशा चढ़े, ऐसा नहीं कि बाप ने जो प्रॉपर्टी दी उसको वहीं तक रखना है। बच्चों का जो अच्छे बच्चे होते हैं, होशियार बच्चे होते हैं, सपूत बच्चे होते हैं, आज्ञाकारी बच्चे होते हैं, बाप की प्रॉपर्टी को बढ़ाते हैं वो। तो बाबा हमको इतनी बड़ी संपत्ति दे रहे हैं, इतनी बड़ी ज्ञान की संपदा दे रहे हैं, तो उसको हमको केवल उतना नहीं कि हमको बस मुरली उतनी की थोड़े बहुत पॉइंट याद कर लिए, वहां तक ही सीमित नहीं, अपने मन बुद्धि को खींचना है, चिंतन बढ़ाना है। और ये धीरे धीरे बढ़ता है, ऐसी आदत ही नहीं पड़ती है चिंतन की, क्योंकि मन सोचता है बड़े आराम से ठीक है सोना, चिंतन छोड़ो क्या करना है, इतनी सारी क्लासेस सुन रहे हैं, इतनी सारी लिटरेचर लिखा हुआ है, क्या करना नया, उससे कुछ नहीं होने वाला। जब तक हमने अपना नहीं किया तो हमारी प्रगति नहीं हुई कभी भी। हम जितनी मर्जी क्लासेस सुन लें किसी की भी, जितनी मर्जी मुरलियां पढ़ लें, लेकिन जब तक हमने अपना चिंतन शुरू नहीं किया तब तक हमारी प्रगति नहीं होगी। सभी महसूस किया होगा, जब अपना चिंतन करते तो अलग सी खुशी रहती है, और केवल वहां सुनने तक ही रहते हैं, मुरली का सुनते सुनाते आगे, फिर पूरे दिन में देखा ही नहीं, खुशी कहाँ रहती है, वो सारी गुम हो जाती है वहीं। तो वो तो मुरली सुनते समय भी थोड़ी सी कोई 0.1% खुशी रहती होगी, और जैसे हम बाहर निकले तो खुशी गायब। तो मुरली के पॉइंट रखने, याद रखने हैं, याद रखते 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 वो हमारे कर्मेंद्रियों में समाते जाएंगे, और उन पॉइंटों के समाने से बहुत सारी बातें हमारे जीवन में परिवर्तन की हमको महसूस होंगी, हमारी प्योरिटी बढ़ती जाएगी, हमारा कर्मेंद्रियों पर नियंत्रण होता जाएगा। ये कर्मेंद्रियां धोखा नहीं देंगी, कर्मेंद्रियां हमारा हमारे पुरुषार्थ में साथ देंगी, है ना। तो हमको ये देखना है। तो बाबा का दूसरी बात थी शुभ संकल्प, कि बच्चों में कमी कमजोरियां हैं तो वो कमाल के रूप में, तो अपनी कमी कमजोरी का चिंतन करके उनको निकालना, ये भी तीव्र पुरुषार्थ है बाबा का। ऐसा नहीं कि कमी कमजोरियां हैं नहीं, उनको देखना है कौन कौन सी है और उसका कारण क्या है, क्यों नहीं हम उस कमी कमजोरी को छोड़ पा रहे हैं, क्यों ताकत नहीं आ रही उस कमजोरी को छोड़ने की, क्यों अभी भी उसमें सुख भास रहा है, जबकि जन्म जन्म बाबा ने कहा ना 63 जन्म भक्ति की, इतना दुख पाया और फिर उसको पकड़ के रखा हुआ है। तो ये दूसरी बात थी शुभ संकल्प भगवान का हमारे बच्चों के प्रति, साथ में ये सोचना कि हमारा हमारे प्रति कितना शुभ संकल्प है, क्या हम अपने प्रति शुभ सोचते हैं, कम सोचते हैं। दूसरों के प्रति शुभ भावना रखने का प्रयास करते हैं हम, लेकिन अपने प्रति शुभ भावना कामना कम करते हैं, अपने अपने प्रति प्यार कम करते हैं हम, ये सोचते हैं दूसरा हमारे से दुखी नहीं हो, लेकिन हम खुद ही खुद के दुख से दुखी होते रहते हैं। तो स्वयं से प्यार करना सीखना है, तो अपनी कमी भी देखनी है और अपनी विशेषताएं भी देखनी है और साक्षियों के देखना है। अगर विशेषताएं हैं तो भगवान की देना है, कमी है तो उनको छोड़ने का प्रयास करना है, कि कौन कौन से ऐसे तरीके में हम अपनाएं जिससे उन कमियों से हम मुक्त हो सके। तो ये दूसरी बात है। तीसरी बात ही बाबा ने कहा, इस संगम युग वरदानों का युग है, प्राप्ति का युग है, अभी अभी का, अभी अभी किया और अभी अभी पाया। तो अभी अभी में क्या क्या हो सकता है, खुशी और संतुष्टता और शक्ति, माना एक अभी अभी अर्थात एक एक सेकंड का पुरुषार्थ करना है, और उसमें योग में कर सकते हैं। अभी अभी सोच लो शरीर छोड़ दिया और सीधा आत्मा निकल के गई परमधाम, है ना, बावक से साथ टच हुई, सारी शक्तियां भरी वापस दे में अभी अभी, और अभी अभी शक्ति की महसूसता होगी, अभी अभी देह से डिटैच मन का अनुभव होगा, अभी अभी यहाँ बैठे हैं, अभी अभी बैठे बैठे सीधा डायमंड हाल में पहुंच जाओ, पहुंच गए, बाबा की वरदान, बाबा का वरदानी हस्त सीधा हमारे सिर पर, और सारे वरदान हमारे मन बुद्धि में समाते जा रहे हैं, बाबा की रूहानी दृष्टि उनसे ज्वाला निकलती जा रही है, और वो सारी ज्वाला हमारी आंखों में समाती जा रही है, हमारे मस्तक में समाती जा रही है, सारी कर्मेंद्रियाँ शुद्ध होती जा रही हैं, पवित्र होती जा रही हैं, एक एक सेकंड में, ऐसे एक एक सेकंड के योग के प्रयोग करने हैं, अभी अभी किया और अभी अभी अनुभव, अभी अभी पुरुषार्थ, अभी अभी फल, ये है एक एक सेकंड का, और भी ऐसे एक एक सेकंड कर सकते हैं, यहाँ बैठे सोचो अभी यहाँ से डिटैच हुए सीधा शांति स्तंभ पर पहुँच गए, चक्कर लगाया वापस आ गए, महसूसता होगी, शांति स्तंभ याद आते ही हमारी सोच ही चेंज हो जाती है, वो संसारिक सोच नहीं रहती है, उसमें एक अलौकिकता आती है, अद्भुत ऊर्जा आती है, एक प्योरिटी आती है, पीस आती है, जो वहां लिखा है वो सारे वाइब्रेशन एक सेकंड में हमारे मन में समाते जाएंगे, तो अभी अभी एक एक सेकंड में कितनी शक्ति भरी, अभी अभी सोचो यहाँ बैठे बैठे सीधा बाबा के कमरे में पहुंच गए, अभी अभी सारी उसकी अनुभूति की, बाप समान स्थिति का, है ना, बाहें सारे जैसे बाबा बुला रहे हैं, अभी अभी अनुभव करो कि सीधा कुटिया में पहुंच गए और बाबा वहां खत लिख रहे हैं, किसे लिख रहे हैं, मुझे लिख रहे हैं, है ना, महसूस करो उस कालखंड में चले जाओ, टाइम ट्रैवलर, है ना, 1969 में बाबा ने शरीर छोड़ा तो उसके पहले का जो उसमें था, सोचो बाबा वहां कुटिया कैसी कुटिया होगी, वो है ना झाड़ पत्तों की कुटिया होगी, घास फूस की कुटिया ही थी वो, तो उस कालखंड में चले जाना, तो इन चीजों से क्या होता है, एक तो हम अपनी बॉडी से विस्मृत हो जाते हैं, डिटैच हो जाते हैं, बाबा से हमारा बुद्धि योग जुड़ जाता है, पुराने जो हमारे संस्कार है, जो कुटिल संस्कार है, जो हमको दुखी करते हैं, उन संस्कारों से मुक्त होते जाते हैं, नए संस्कारों का निर्माण होता है, नई आदतों का निर्माण होता है, और वो ये सारी नई आदतें इस तरह की जो बाबा कहते हैं ड्रिल करो बार बार ड्रिल करो, तो ड्रिल में हमारा इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा, रुचि बढ़ती जाएगी, मन का इस संसार से डिटैच होना आसान हो जाएगा, वैराग्य पैदा नहीं करना पड़ेगा, वैराग्य अपने आप स्वतः हो जाएगा, ये तुम सोचे हमको मैं वैरागी हूँ, इस मान के सोचने से कुछ होगा, इस ज्ञान को ही जीवन में लाने से वैराग्य अपने आप होगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसे हैं कि सोचो मेरा लगाव समाप्त हो जाए, सोचने से क्या होगा, सोचने से होगा लगाव समाप्त, ज्ञान से लगाव बढ़ जाएगा तो लगाव अपने खत्म हो जाएंगे, कहीं तो चेंज करना पड़ेगा, अगर एक चीज छोड़नी है तो दूसरी पकड़ेंगे तो पहले वाली छूटेगी, नहीं तो छूटेगी नहीं, क्योंकि मन को आदत पकड़ी है, आदत पड़ी है पकड़ने की, वो तो कहीं ना कहीं जाएगा, कुछ ना कुछ तो सोचता रहेगा, तो नई आदतों का हमको निर्माण करना है, तो हमको ये नहीं सोचना कि हमारा मोह घर में बहुत है छूट जाए, सोचने से कुछ नहीं होगा, वो नया मोह क्रिएट करना है, भगवान से मोह, उसके ज्ञान रत्न से मोह, उसकी सेवा से मोह, तो दिशा चेंज करनी है, तो ये है तीसरी बात, क्या था, ये है झटपट का सौदा, बाबा ने कौन सा एग्जाम्पल दिया, जब यज्ञ की स्थापना हुई तो साक्षात्कार होता था, एक झटपट का, और होता भी था उस समय, है ना, भक्ति मार्ग में भी ऐसे कहते हैं, तो इस ये तो प्रैक्टिकल में हुआ, झटपट का सौदा, एक सेकंड में साक्षात्कार हुआ, तो यहाँ भी अभी अभी किया और अभी अभी प्रत्यक्ष फल का अनुभव करना, और मैक्सिमम योग के ही नए नए प्रयोग करने हैं, है ना, जैसे यहाँ से अभी बैठे हैं, अभी सोचो सभी यहाँ बैठे हैं, सारे मधुबन के वाइब्रेशन भर के अपने में भरे और सीधा अपना लौकिक घरों में पहुँच गए और सारे लौकिक घर में यहाँ के वाइब्रेशन भर दिए, एक के चेंज करने की जरूरत नहीं, उस घर को ऐसे वाइब्रेशन से भर दो, जो उन वाइब्रेशन में आने से वो अपने आप चेंज हो जाएंगे, नहीं तो एक एक के प्रति हम बैठ के कहाँ कहाँ तक सोचते रहेंगे, आज फलाना ठीक नहीं है, कल वो ठीक नहीं है, आज इसका मूड खराब है, कल उसका मूड खराब है, किस किस को मनाएंगे, होलसेल सोचना है, क्योंकि विश्व कल्याणकारी बाप के बच्चे हैं, किसी एक के नहीं है, एक एक आत्मा के प्रति सोचने की जरूरत नहीं, अभी टाइम कम है, बाबा ने बोला लास्ट पैरा मुरली का, समय बहुत कम है, काम बहुत बड़ा है, स्पीड कैसी चाहिए, तेज स्पीड चाहिए, 5G उससे भी ऊपर, फटाफट सेवा की बात है, तो हमको बेहद का सोचना है और सवेरे ये सारे एक एक सेकंड के अनुभव करने हैं, तो एक एक सेकंड का अनुभव करते जाएंगे तो सारे दिन में अगर 50 बार भी करें तो कितना हो जाएगा, और अगर बार बार करते रहेंगे तो हमारा जो दिनचर्या वो योग युक्त दिनचर्या हो जाएगी, फिर अगर बाहर जाएगा मन बुद्धि तो फिर वापस इसमें आ जाएगा, क्योंकि इसमें रस बैठ गया है, खुशी मिल रही है इसमें, और बाबा की इसमें हमको मदद की महसूसता होगी, और मदद की जहां महसूसता होगी तो मन इधर उधर जाएगा कैसे फिर, और जो हमारे समन संपर्क में आएंगे उनको भी महसूसता होगी। तो ये तीसरी बात थी, क्या उनसी बात थी तीसरी, झटपट का सौदा एक सेकंड में, अभी अभी किया। नहीं तो बाबा ने बोला एक वर्ष एक सेकंड कितने के समान है, एक वर्ष के समान है। तो अगर 5000 सेकंड चले गए तो सारा काम हो गया पूरा। तो इसका अर्थ क्या है कि एक टाइम बड़ा कीमती है ना, तो ये प्रयोग करना है। चौथी बात कौन सी है, मेहनत के दो कारण बताए बाबा ने, कौन से, हाँ मेहनत तब होती है जब माया के विघ्नों से बच्चे फेल हो जाते हैं। माना विघ्न आएंगे, ऐसा नहीं विघ्न नहीं आएंगे, लेकिन हम उनसे घबराएंगे नहीं, है ना। जैसे समस्या आती है तो जो शक्तिशाली होगा उसका समाधान करेगा, उसको पकड़ के थोड़ा बैठेगा। जैसे एग्जाम देते हैं बच्चे, तो अगर कठिन क्वेश्चन है तो उसको पकड़ के थोड़ा बैठ जाएगा, वो उसका सोल्यूशन करने का कोशिश करेगा ना, है ना। तो उसी तरह से जीवन में समस्या आएंगी, परिस्थितियाँ आएंगी, विघ्न आएंगे, सर्कमस्टांस आएंगे, लेकिन उनसे हमको घबराना नहीं है, उनसे निकलने का हमको प्रयास करता है। तो ये फेल नहीं होना, बाबा ने कहा है एक इसी मुरली में है, भाग्य विधाता बाप के बच्चे कभी फेल हो नहीं सकते, शिक्षक भाग्य विधाता शिक्षक के बच्चे कभी फेल हो नहीं सकते, वो पास विद ऑनर होंगे, इसी मुरली में एक सेंटेंस है, है ना। तो ये, और दूसरा कारण कौन सा है मेहनत का, फेलिंग की बीमारी तो बड़ी जल्दी हो जाती है ना, कोई अपना ही बोल दे। और फीलिंग कई तरह की होती है, ना मान लो ठीक ठाक चल रहे हैं और कोई आके बोल दे आप तो कुछ चेहरा ऐसे ऐसे लग रहा है, उतरा हुआ लग रहा है, आज क्या बात है, अब उसको बताएंगे ना अंदर से फीलिंग चालू होगी, है ना। कई बार योग से निकलते तो बोलने को मन नहीं करता है, है ना, लगता सामने वाला बिल्कुल नहीं बोले, तो सामने वाला पूछता तबीयत ठीक है, तो उस समय क्या होगा, अंदर से फीलिंग थोड़ी सी तो आती है ना कि इसको बोले कैसे कैसे सुनाए अभी। ऐसी छोटी छोटी बातों में फीलिंग आती है। अच्छा, जिससे हमारी दोस्ती है और कहीं दोस्तों का संगठन है और आकर किसी ने ऐसे कर दिया, हमारे ऊपर टॉन्ट कर दिया, ये तो है ही ऐसा, तो वहाँ भी फीलिंग आ जाती है। अच्छा, सेंटर में रहते हैं, बड़ी दीदी ने बोली या छोटी दीदी ने कुछ बोल दिया, तो फीलिंग आ जाती है। घरों में ऐसी फीलिंग आ जाती है। तो फीलिंग की बीमारी कैसे, किस तरह की है, फ्लू की तरह है, और फ्लू तो अभी फैल रही है, संक्रमण कोरोना तो है ही है फाइनल, है ना। तो इस बीमारी से क्या होता, और फिर कितने उसकी निशानियां बताएं, जब फ्लू की बीमारी होती तो मुंह कड़वा हो जाता है, और उससे पहले मन में हलचल, है ना, हिलता है मन, अर्थात ये पहले शरीर शेकिंग करता है, हिलता है, तो यहाँ मन हिलता है, मन की स्थिति हिल जाती है, है ना। कई तरह के संकल्प चलते रहेंगे, ये ऐसे है वैसे है, इसको ऐसे सोचना चाहिए, इसको ऐसे करना चाहिए, ये अपने आप को क्या समझते हैं, मन हलचल में आएगा। फिर दूसरा, मुंह कड़वा हो जाएगा फ्लू में, और यहाँ क्या होगा, मुख से कड़वे बोल निकलेंगे, और तीसरा कमजोरी भी आ जाएगी, और सर्दी गर्मी, सर्दी कौन सी आएगी, पुरुषार्थ में ठंडे हो जाएगी, ठीक है सभी ऐसे ही है, चलता सभी, जैसे थोड़ा किसी ने बोला वो चलो घूमने, ठीक है चलो योग तो कल भी कर लेंगे हम, ऐसे छोड़ देते हैं ना, योग ज्ञान योग का टाइम है, अगर बोल दिया किसी ने चलो हाँ चलो ठीक है कल कर लेंगे, हाँ अगर कभी कभी जाना पड़ जाए तो जाओ, लेकिन दिन में उस पुरुषार्थ को पूरा गैलप करना है। जैसे घर में अगर आपको रिश्तेदारी आ गए हैं तो ऐसा नहीं है कि उनको हम छोड़ के चले जाएंगे, वो तो सामाजिक, वो तो हमारी पारिवारिक दायित्व है, वो तो निभाने निभाने हैं। तो वहाँ ऐसा नहीं कि मुरली के टाइम में घर में आ गया और उनको कोई नहीं हम तो मुरली सुनने जा रहे हैं हम बाद में मिलेंगे, वहाँ तो छोड़नी पड़ेगी, वो अंडरस्टैंडिंग चाहिए थोड़ी, लेकिन दिन में हम अच्छी तरह से मुरली पढ़े, क्योंकि अगर दूसरों को इस पथ पर लाना है तो उनके अनुसार भी थोड़ा थोड़ा चलना पड़ेगा। हम डायरेक्ट ये नहीं सोच सकते कि वो ही हमारे अनुसार ही चले, उनके साथ मित्रता करनी पड़ेगी। अगर दुश्मन के देश में जाना है तो उनके साथ पहले दोस्ती करनी पड़ेगी, है ना। तो हमको अगर सबको बाबा का बनाना है तो उनकी बात सुननी पड़ेगी, उनसे दोस्ती करनी पड़ेगी। तो क्या बीमारी हो जाएगी, सर्दी अर्थात पुरुषार्थ में ठंडे नहीं पड़ना है, और गर्मी अगर ज्ञान की बात सुनाएंगे किसी को तो वो भी अच्छी नहीं लगती है, बोला आ गया बड़ा ज्ञानी, देख लिए बहुत सारे बोल देते ना ऐसे, कहीं तो वो भी हमको नवस देके सुनानी है किसी को, ऐसे नहीं डायरेक्ट ज्ञान किसी को नहीं सुनाना, युक्ति युक्त तरीके से सामने वाला का चेहरा परखने से, परखने की शक्ति बहुत चाहिए, और इस ज्ञान को जितना अमल में लाते जाएंगे परखने की शक्ति बढ़ती जाएगी। परखने की भी बात बाबा ने इस मुरली में कही, कहाँ पर, हाँ होली अंश। तो ये चौथी बात थी, मेहनत के कारण दो मुख्य कारण फेल होना और फील करना है। फ्लू की बीमारी होती है और वो फैलती है, तो हमको इनसे दोनों बीमारियों से बचना है। फिर पांचवी बात थी, कोई कोई बच्चों को मेहनत बहुत अच्छी लगती है ना, कुर्सी पर बिठा दे तो बैठेंगे नहीं, मेहनत की आदत पड़ी है। और सबसे बड़ी जो मेहनत वाली बात है ना, वो खाली बैठने की बड़ी मेहनत है, बैठने की बहुत सारी मेहनत ही है वास्तव में, असली मेहनत तो वही है। अगर हमको बोल दिया जाए कि कोई सेवा नहीं करनी है, आप बैठ जाओ, और मन इधर उधर मन बुद्धि भागने नहीं चाहिए, आपका सारा खर्चा पानी हम देंगे, रोटी पानी देंगे, आपको कहीं कुछ नहीं जाना, लेकिन मन बुद्धि नहीं भागना चाहिए, कितनी बड़ी मेहनत है ये। वो वाली मेहनत तो आसान है जो स्थूल रूप से करते हैं हम, लेकिन जो मन की मेहनत है, मन को कंट्रोल करना, उसको नियंत्रण करना, उसको अच्छी अच्छी खुराक देना, तो ये वास्तविक मेहनत है। लेकिन बाबा इसको मेहनत से, इसको तो मोहब्बत समझ रहे हैं। अर्थात जितना बाबा के ज्ञान रत्न हमारी बुद्धि रूपी झोली में भरे रहेंगे, तो हम स्थूल मेहनत की उतनी जाने की जरूरत नहीं है। इसलिए बाबा की सबसे बड़ी सेवा कौन सी है, मनसा सेवा है। मन बुद्धि हमारा जितना शुद्ध होता जाएगा, तो हमारा आसपास का जो एटमॉस्फेयर है, वातावरण है, वो शक्तिशाली बनता जाएगा। और बाबा कहते हैं सबसे बड़ी सेवा है वातावरण को शक्तिशाली बनाना, क्योंकि जो भी हमारे संबंध संपर्क में आएंगे है ना, तो वो उसकी अनुभूति करेंगे। तो जो व्यर्थ की दो बातें बताई, उसमें एक ये भी था, संबंध संपर्क और ब्राह्मणों के संबंध में और अज्ञानी आत्माओं के संबंध में आने से व्यर्थ होता है तो फील करते हैं, है ना। तो ये थी कि मेहनत तो करनी है हमको, ये मोहब्बत वाली मेहनत करनी है। तो ये कौन सी बात थी, पांचवी बात। छठी बात थी भक्ति की। भक्ति में क्या किया, बाबा ने कहा तुम बच्चों की है अव्यभिचारी व्यक्ति थी, भक्ति थी, और वो भक्ति भी साधारण नहीं है, उसमें भी उसमें के अनुसार सुख शांति आनंद का अनुभव किया है ना। तो अभी संसार के जो भक्त हैं और हमारी भक्ति में बाबा ने अंतर बताया, क्या अंतर है, उनका गायन होता है लेकिन पूजन नहीं होता है। किसका गायन होता है, मीरा का गायन होता है, तो पूजन क्यों नहीं होता है, क्योंकि रही तो वो भी पवित्र रही, ज्ञान ही नहीं, क्योंकि परमात्म आज्ञाओं पर परमात्म ज्ञान के अनुसार श्रीमत का पालन हम करें, इसलिए हमारा पूजन होता है। और मीरा ने किसको याद किया, भगवान को याद थोड़ा नहीं किया, उसने श्री कृष्ण को याद किया, इसलिए उनका पूजन है। लेकिन पूजन में किस रूप में, स्टैच्यू के रूप में होता है, और स्टैच्यू पर तो कुछ भी होता रहता है ना, खुले में होता है वो, उस पर तो बहुत सारे पंछी वंछी आके बैठ जाते हैं, बहुत सारे लोग उसके ऊपर समर्पित हो जाते हैं, पंछी वगैरह। तो हमारा पवित्रता के कारण बाबा की इतनी विधि पूर्वक पूजा होती है, वो पूजा हो ना हो वो तो बाद की बात है, लेकिन अभी की महसूसता करनी है, क्योंकि बात तो कौन महसूस करेगा, वो तो अभी करना है। इसलिए बाबा ने कहना श्रेष्ठ मत और गत, अभी तुम बच्चे अनुभव करते हो। इससे एक तो है मुक्ति, जीवन मुक्ति अर्थात स्वीट होम की मुक्ति, और जीवन मुक्ति अर्थात सत्यु का राज्य, तो उसकी जीवन मुक्ति, लेकिन तुम बच्चे दोनों अनुभव अभी करते हो। तो ये थी भक्ति वाली बात। फिर थी नौदा भक्ति और ज्ञान, नौदा ज्ञान। तो नौदा भक्ति तो संसार में जो है आठ बातें वही है, तो नौदा ज्ञान की हमको लिस्ट बनानी है कि कौन सा नौदा ज्ञान, क्योंकि चिंतन को बढ़ाना है, अपनी बुद्धि को हमको विशाल बनाना है, तो नौदा ज्ञान कौन कौन सा हो सकता है, तो हमको लिखना है, खुद एक लिस्ट बनाए, खुद एक डायरी बनानी चाहिए, तो उसमें हम लिखते रहे। और सिर्फ डायरी, अपनी अपनी डायरी को देख के खुशी होती है। फिर हम भी महसूस करते हैं, जब नए नए ज्ञान में चले थे तो उसमें हम लिखते थे सवेरे से लेकर शाम तक कितना योग किया, वो उसमें तो सेवा को भी हम योग में जोड़ देते थे, जितना समय भगवान के प्रति लगाया हमने उसको भी योग में जोड़ देते थे सीधा, और वास्तव में वो योग वाला ही सेवा होती थी। क्योंकि शुरू में कितनी लगन होती है, कितनी तड़फ होती है सबकी, थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के भी, अगर 10 मिनट भी निकाले, 5 मिनट निकाले, तो भी हम जोड़ देते थे। तो आज अगर उस डायरी को देखते ना, पुरानी संपदा, पुरानी जो कमाई होती है उसको आदमी जब देखता है तो कितनी खुशी होती है। इसलिए बाबा ने हमको अनेक युक्तियां बताई, अपना चार्ट रखो, पोता मेल रखो, डायरी बनाओ, तो धीरे धीरे, हाँ फिर धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी, तो फिर रखने की जरूरत नहीं पड़ती, फिर तो हमको स्वतः स्मृति में रहता है कि सारे दिन में दिनचर्या में कहाँ कहाँ व्यर्थ जा रहा है, कहाँ कहाँ समर्थ जा रहा है। तो ये नौदा ज्ञान की एक लिस्ट बनानी, सभी अपनी अपनी बना सकते हैं। फिर बाबा ने किसको देखा, होली अंशों को, होली अंशों की निशानियां बताई बहुत सारी, कौन कौन सी, होली अंश अर्थात समर्थ आत्मा, जो व्यर्थ और समर्थ को परख सकते हैं, गलत क्या है, ठीक रॉन्ग क्या है, राइट क्या है, उसको परख सकते हैं। होली हंस अर्थात दूसरों की अवगुणों को देखने वाले, है ना, अच्छा गुणों को देखने वाले, ठीक है। हाँ तो आप तो बोल ही नहीं है कोई भी, मास्क पहनिए। होली हंस अर्थात सबके गुणों को देखने वाले, कंकड़ ग्रहण करने वाले नहीं, मोती ग्रहण करने वाले, रत्न ग्रहण करने वाले। होली हंस अर्थात जमा करने वाले, होली हंस अर्थात बड़ी दिल वाले, इसी बुद्धि इसी मुरली में था। छोटी दिल वाले नहीं है, जो जमा करता है बाबा कहते हैं उसकी दिल बड़ी होती है, जो जमा नहीं करते दिल छोटी होगी। अर्थात अगर हमारे पास स्टॉक है तो दिल बड़ी होगी, बांटेंगे और जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा, है ना। हमने देखा अगर स्थूल चीज़ भी किसी को थोड़ी दी ना, अगर एक चीज़ भी, 10 चीज़ें आ जाती उसमें, क्योंकि संगम को प्रदान है एक का पद्म गुणा, और स्थूल में भी होता है सूक्ष्म में भी होता है। तो होली हंस अर्थात कंकड़ को छोड़ने वाले, रत्नों को चुगने वाले, समर्थ शक्तिशाली बनने वाले, बड़ी दिल वाले, जमा करने वाले। बाबा ने कहा 63 जन्म तुम्हारा तन भी गया, मन भी गया, धन भी गया, सब कुछ चला गया हाथ से, गवाया गवाया, अभी केवल जमा करने का टाइम है। तो सारे दिन में हम कितना जमा कर रहे हैं, ये हमको स्वयं के ऊपर ध्यान रखने की जरूरत है। तो ये होली हंसों की बात थी। फिर होली अर्थात पवित्रता, पवित्रता एक ऐसी अग्नि है जो संसार के सर्वात्मों के खिचड़ी को भस्म कर देगी। कब? बाबा ने कहा जब तुम्हारी संपूर्ण स्थिति हो जाएगी तो एक सेकंड में सारे संसार की आत्माओं की अपवित्रता नष्ट हो जाएगी, भस्म हो जाएगी। तुम हो डैश कौन, भस्म करने वाले कौन, ज्वालामुखी। हाँ ज्वालामुखी, तो ये भी योग का बहुत अच्छा प्रयोग है। तो सोचना मैं आत्मा यहाँ ज्वालामुखी बैठी हूँ और निरंतर एक आग धधकती जा रही है, या इस बॉडी के अंदर भी एक वीडियो आया भी आया था जैसे यहाँ आग के अंदर, गोले के अंदर देवी बैठी हुई है। और देखते ना पहले टीवियों में आता था, अभी तो हम टीवी देखते नहीं हैं, लेकिन पहले आता था टीवियों में जो देवी जा रही है और आग का गोला पीछे असुर के पीछे जा रहा है असुर को भस्म करने के लिए। बाबा ने कहा असुर को भस्म अर्थात आसुरी शक्तियाँ जो हमारे अंदर हैं उनको भस्म करना है। आसुरी शक्तियाँ कहाँ हैं? असुर तो हमारे अंदर ही बैठे हुए हैं सूक्ष्म रूप से, चाहे वो संकल्प के रूप में है, चाहे कोई बोल के रूप में है, चाहे हमारे पुराने संस्कार हैं, स्मृतियां हैं, अतीत की यादें हैं, वो ही अवसर हैं, उनको हमने पकड़ के रखा हुआ है। तो उनको भस्म करते देखना है, तो अपनी प्योरिटी को बढ़ाते जाना है। प्योरिटी तो हमारे जीवन का श्वास है। प्योरिटी क्या है? हमारे जीवन की रॉयल्टी है। टी कितने प्रकार की टी है? टी बना सकते हैं, टी की लिस्ट 12-13 प्रकार की टी आ जाएगी। प्योरिटी, पब्लिसिटी, रॉयल्टी, सिंपलिसिटी, पर्सनैलिटी, ऐसे टी टी बना सकते हैं। फिर दूसरी टी पीने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन छूटती नहीं है सहज वो भी। तो ये थी पवित्रता की बात। फिर बाबा ने किससे बात की है लास्ट में? पंजाब वाले कौन हैं? निर्भय। और क्यों? क्योंकि अभी मर चुके हो, तो डर किस बात का? डर तो तब होता है और जो मरे हुए से तो सबको डर लगता है, वो खुद नहीं डरता है, वो तो चला गया शरीर छोड़ के, लेकिन उसको देख के सब डरेंगे। तो हमको हमेशा कौन सी अवस्था रहना है? मृत अवस्था में, अर्थात इस पुरानी दुनिया से मृत अवस्था में, पुरानी स्मृतियों से। कोई संसार की ऐसी स्मृति हमारे मन को हलचल में लाए, अर्थात मन बार बार उधर खींचे ना, हाँ इस संसार में तो रहना है लेकिन उधर हमारी अटैचमेंट ना बढ़े, वहाँ से अटैचमेंट हमारी छूटती जाए और इस तरफ हमारी अटैचमेंट बढ़ती जाए। तो धीरे धीरे हमको ये प्रयास करना है। और राजस्थान अर्थात राज्य अधिकारी, बाबा ने कहा रेत वहाँ रेत है बहुत, वहाँ कहाँ? तो बाबा ने तो वहाँ बोला मुरली में। जैसे बाबा दूसरी स्टेट में आए हुए तो बाबा ने बोला वहाँ तो रेत बहुत है। तो लगता है उसमें बाबा परमधाम से बोल रहे होंगे। तो हाँ, तो ऐसे राज्य अधिकारी बनना है। और उसी वहाँ के अभी तो सेवा बहुत है, काम बहुत पड़ा है, स्पीड बॉडी तेज चाहिए। अभी तो मनुष्य आत्माओं को भी तुम बच्चों ने संदेश नहीं दिया, तो प्रकृति को कब पावन बनाएंगे? लास्ट लाइन मुरली की। तो ऐसे मुरली में ढेर सारी बातें हैं, अभी भी बहुत सारे पॉइंट छूट गए होंगे, यहाँ थोड़ी सहज रहती है, लेकिन करत करते अभ्यास के जड़ मत उस जान। तो हमको व्यक्तिगत तौर पर पुरुषार्थ से प्यार करने के तरीके सीखना, ये नहीं हम सोचें कि हम किसी को सुनाएं, धीरे धीरे अपने आप, क्योंकि दूसरों को सुनाना भी आसान लगता है, अपने को ज्ञान सुनाना बड़ा कठिन काम है। ये बैठ जाओ योग में, जब मन बुद्धि भटक रहा है तो सोचो मुरली के कौन कौन पॉइंट जो हमारी बुद्धि में अभी है, क्योंकि वह अमृत की तरह काम करेंगे, हमारी बुद्धि को स्वच्छ बना देंगे, प्योर सच्चा सोना बना देंगे, और फिर धीरे धीरे ज्ञान रत्न ठहरने आरंभ हो जाएंगे। नहीं तो सहज काम थोड़ा नहीं, मेहनत तो है लेकिन इस मेहनत में बहुत सुख है, अतीन्द्रिय सुख है वास्तव में, है ना। और बाबा ने साक्षात्कार की कौन सी बात बताई, वरदान में क्या था, चलन और चेहरे से क्या करना है, पुरुषोत्तम बाप मन पुरुषोत्तम बनना है। तो बाबा ने कहा भले कर्म साधारण हो लेकिन स्थिति श्रेष्ठ हो, चलन और चेहरा बाप को प्रत्यक्ष करे, ये चित्र ही बन जाए, चलता फिरता चित्र बन जाए। तो ये था। और स्लोगन क्या था आज का, चाहे उधर से बोलने चाहिए की बात है, एक रस स्थिति में स्थित रहने वाले ही सच्चा तपस्वी है। एक्यूरेट नहीं बोला वैसे, ये क्या था एक्यूरेट, हाँ आसन की बात ही है, एक रस स्थिति की आसन पर स्थित रहना ही सच्चा तपस्वी निशानी शब्द नहीं था सच्चा तपस्वी, एक रस स्थिति के आसन पर स्थित रहने वाला ही सच्चा तपस्वी है। हाँ श्रेष्ठ आसन ठीक है। तो देखना ये आसन, ये ठीक ठाक है आसन, यहाँ से उतर जाते हैं, मिट्टी की बात थी बीच में एक मुरली में है ना, ये देह रूपी हम मिट्टी के इस आसन से छोड़ के मिट्टी में तो नहीं चले जाते हैं, तो मिट्टी की कौन सी बात थी कि यहाँ तो मिट्टी का ही बहुत मूल्य हो गया लेकिन वहां तो हीरे मिट्टी की तरह होंगे सारे। तो कितनी सारी बातें हैं ऐसे, धीरे धीरे आपस में चर्चा करेंगे जब भी मौका मिले, अगर अकेले हैं तो भी ठीक है, अगर दो मिल जाए चार मिल जाए तो आपस में ज्ञान चर्चा करने की आदत डालनी है, नहीं तो दूसरी बात तो शुरू हो जाती है, उनके लिए तो मेहनत करनी नहीं पड़ती है, है ना। पहले सोचेंगे ज्ञान चर्चा करेंगे ज्ञान चर्चा, लेकिन वो खत्म कहीं दूसरी जगह चली जाती है। हम सब अनुभवी हैं इसके, क्योंकि बड़ा उनसे भी बड़ा सुख मिलता है, ऐसे थोड़ी नहीं है, और उसमें टाइम बड़ी जल्दी व्यतीत हो जाता है, और ज्ञान चर्चा करने में टाइम दूसरा पॉइंट ही नहीं याद आता है वो तो, हाँ तो उसमें पॉइंट ही नहीं याद आता है, और उसके पॉइंट याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, वो तो अपने आप ही अवेर ज्ञान सागर जैसे निकल रहा मुख से। तो ये 10 बातें सुनी हमने, सबसे पहली बात थी कौन सी, त्रिदेव चेता ने किसको देखा, त्रिदेव चेता बाप और बच्चों का मिलन था ये। दूसरी बात थी बाप का शुभ संकल्प कौन सा है। तीसरी बात थी ये झटपट का सौदा है, अभी अभी का सौदा है, अभी अभी किया और अभी अभी प्रत्यक्ष फल की अनुभूति की। चौथी बात थी मेहनत के दो कारण हैं, कौन कौन से, एक तो विघ्नों में फेल हो जाते हैं और फील करते हैं, फील होने से फ्लू की बीमारी होती है, फ्लू होने से क्या होता है, मन शेक मन की हलचल होती है, जैसे शरीर हिलता है ऐसे मन की हलचल होती है, फिर कड़वा हो जाता है मुख, स्वाद ठीक नहीं होता है तो कड़वे बोल निकलते हैं मुख से, फिर सर्दी होती है अर्थात पुरुषार्थ में ठंडे हो जाते हैं, गर्मी अर्थात कोई ज्ञान का पॉइंट अच्छा नहीं लगेगा, ज्ञान किसी को बोलेंगे तो उल्टा सामने से बोलेगा, तुम अपने आप को ठीक रख मेरे बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, तो कुछ भी बोलेंगे। तो ये पांचवी बात फिर थी मेहनत की, चौथी और पांचवी मेहनत की, दोनों मेहनत करने की इनको आदत है, और छठी बात थी भक्ति की, सातवीं बात थी नौदा भक्ति और नौदा ज्ञान, और आठवीं बात थी होली अंशों का कर्तव्य, नौवीं बात थी होली अर्थात पवित्रता की सारी निशानियां, और दसवीं बात थी निर्भय और राज्य अधिकारी राजस्थान और पंजाब, और बाकी दूसरी बातें थी। तो ऐसे अपने मन बुद्धि बिजी रखना है और निशान।
संकल्प सास तुमने बच्चों पे हैं लुटाए, उपमा तुम्हारी बाबा हम तो कहीं न पाए, हमें खुद सा है बनाया, हमें खुद सा है को भुलाए किस तरह, तेरी पालना सबा तेरी
आभा।
तेरी पालना का बाबा, तेरी पालना का बाबा, एहसान चुकाए किस तरह, एहसान चुकाए किस तरह।